नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। टॉड लामल की पुस्तक CCNA रूटिंग एंड स्विचिंग एग्जाम्स एट सोसेगेडियन अपोसेगेन टोक्चिडाजाबोन एंड सेवेडेन एंड टाउस रेट एट डेलिबेन कनोगेन। सिस्को की उस समय की एंट्री स्तर रूटिंग एंड स्विचिंग प्रमाणन श्रृंखला के लिए बनाई गई अध्ययन मार्गदर्शिका है। यह ICND दो संयुक्त ICND और संयुक्त 108 साइटेड CCNA परीक्षा के उद्देश्यों को एक ही ढांचे में संबोधित करती है। पुस्तक का स्वर केवल परीक्षा केंद्रित प्रश्नोत्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि नेटवर्क कैसे काम करते हैं, राउटर और स्विच किस तर्क से निर्णय लेते हैं तथा कॉन्फ़िगरेशन और समस्या निवारण में सिद्धांत कैसे लागू होता है, इस पर भी केंद्रित है। लैमल विषयों को आधारभूत नेटवर्क संचार से शुरू करके IP एड्रेसिंग, स्विचिंग, रूटिंग, वैन सुरक्षा और ट्रबल शूटिंग तक क्रमबद्ध ढंग से ले जाते हैं। लिखित लैब और अभ्यास आधारित संरचना इसका महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि सिस्को परीक्षाओं में कमांड नेटवर्क व्यवहार और त्रुटि पहचान की व्यावहारिक समझ आवश्यक होती है। यह पुस्तक अपने प्रकाशन काल के परीक्षा संस्करणों के लिए उपयोगी है, न कि वर्तमान CCNA परीक्षा के प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम के लिए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले नेटवर्क की आधारभूत भाषा, डेटा प्रवाह और TCP/IP मॉडल। पुस्तक की शुरुआत नेटवर्किंग की उस बुनियाद से होती है, जिसके बिना सिस्को कमांड याद करना सतही अभ्यास बन जाता है। इसमें नेटवर्क उपकरणों की भूमिकाएं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का अंतर, इथरनेट संचार, फ्रेम, पैकेट और डेटा के स्तरित रूपांतरण जैसे विचार केंद्रीय हैं। पाठक को यह समझना होता है कि किस संदेश का निर्माण एप्लीकेशन स्तर पर होने के बाद ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस स्तरों से गुजरते हुए भौतिक माध्यम तक कैसे पहुंचता है। यह ढांचा केवल परिभाषाएं नहीं देता, बल्कि ट्रबल शूटिंग का क्रम भी सुझाता है। उदाहरण के लिए, केबल या इंटरफेस की समस्या, लेयर 2 की स्विचिंग त्रुटि और लेयर 3 की रूटिंग विफलता अलग प्रकार के लक्षण देती हैं। पुस्तक OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल को नेटवर्क व्यवहार को वर्गीकृत करने के उपकरण के रूप में रखती है। इसी से मैक एड्रेस और IP एड्रेस की अलग भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं। मैक एड्रेस स्थानीय डिलीवरी से जुड़ा है, जबकि IP एड्रेस अलग नेटवर्कों के बीच पहुंच निर्धारित करता है। इस अंतर को समझे बिना डिफॉल्ट गेटवे, ARP, स्विचिंग और रूटिंग की व्याख्या अधूरी रहेगी। शुरुआती अध्याय इसलिए आगे के सभी कॉन्फ़िगरेशन विषयों के लिए वैचारिक आधार तैयार करते हैं। दूसरा, IPv4 एड्रेसिंग, सबनेटिंग और IPv की व्यावहारिक भूमिका। IP एड्रेसिंग इस अध्ययन मार्गदर्शिका का सबसे उपयोगी और परीक्षा संवेदनशील भाग है। पुस्तक IPv4 पते को केवल 4 संख्याओं के रूप में नहीं, बल्कि नेटवर्क भाग और होस्ट भाग के संयोजन के रूप में समझाती है। सबनेट मास्क, प्रीफिक्स, लंबाई, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और उपलब्ध होस्टों की गणना का उद्देश्य यह तय करना है कि सीमित एड्रेस स्थान को अलग विभागों, लिंक और प्रसारण डोमेन में कैसे बांटा जाए। सबनेटिंग में गति इसलिए महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क डिजाइन और परीक्षा प्रश्न दोनों में सही सीमा और सही गेटवे पहचानना पड़ता है। लैमल की शैली में अवधारणा के बाद गणना और फिर विन्यास का संबंध बनाया जाता है। गलत मास्क होने पर दो मशीनें भले ही समान भौतिक स्विच पर हों, वे अपेक्षित ढंग से संवाद नहीं कर पाएंगी। पुस्तक IPv को भी आवश्यक विस्तार के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें लंबे हेक्साडेसिमल पते, संक्षिप्त लेखन, एड्रेस प्रकार, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और IPv क्लास से भिन्न व्यवहार पर ध्यान है। IPv की चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक नेटवर्कों में इसका उपयोग बढ़ने के साथ रूटिंग और एंड टू एंड कनेक्टिविटी की योजना बदलती है। यह भाग पाठक को याद रखने की बजाय पते पढ़ने, बांटने और त्रुटियां पहचानने की क्षमता देता है। तीसरा, स्विचिंग, VLAN और स्पैनिंग ट्री द्वारा लोकल नेटवर्क नियंत्रण। लोकल नेटवर्क में स्विच केवल पोर्टों को जोड़ने वाला उपकरण नहीं है, वह मैक एड्रेस सीकर फ्रेम अग्रेषित करता है और प्रसारण डोमेन को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। पुस्तक इस व्यवहार को स्विच मैक एड्रेस टेबल, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और अज्ञात गंतव्य फ्रेम के संदर्भ में समझाती है। इसके बाद वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात VLAN का उपयोग अलग उपयोगकर्ता समूहों को एक ही भौतिक स्विचिंग ढांचे पर तार्किक रूप से अलग करने के लिए सामने आता है। VLAN अलग प्रसारण डोमेन बनाते हैं, इसलिए विभागीय विभाजन, प्रदर्शन और आधारभूत सुरक्षा में उपयोगी है, किंतु अलग VLAN के उपकरणों के संवाद के लिए इंटर VLAN रूटिंग चाहिए, जिससे स्विचिंग और रूटिंग का संबंध स्पष्ट होता है। ट्रंक लिंक अनेक VLAN का ट्रैफिक एक लिंक पर ले जाने देते हैं और टैगिंग की जरूरत पैदा करते हैं। पुस्तक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की भूमिका भी रेखांकित करती है। नेटवर्क में अतिरिक्त लिंक उपलब्धता बढ़ाते हैं, लेकिन लेयर 2 लूप बनने पर फ्रेम अनियंत्रित रूप से घूम सकते हैं और ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म उत्पन्न हो सकता है। इत स्पैनिंग ट्री अनावश्यक मार्गों को नियंत्रित करके लूप रोकता है, फिर भी वैकल्पिक कनेक्शन को विफलता की स्थिति के लिए सुरक्षित रखता है। यह विषय दिखाता है कि विश्वसनीयता और नियंत्रण साथ साथ डिजाइन किए जाते हैं। चौथा, राउटिंग निर्णय, स्थिर मार्ग और डायनेमिक प्रोटोकॉल। रूटिंग वाला भाग बताता है कि राउटर किसी पैकेट को अगले नेटवर्क की ओर भेजने का निर्णय कैसे लेता है। राउटर अपने रूटिंग टेबल में गंतव्य नेटवर्कों की जानकारी देखता है, सबसे विशिष्ट मिलान चुनता है और पैकेट को उपयुक्त नेक्स्ट हॉप या आउटगोइंग इंटरफेस की ओर अग्रेषित करता है। तो देखो रे इंटरनेट और वो हमारे शरीर दो काले बारी बार इंगा इरोड बॉयस अगर पर आज़ाद गए अच्छी बोल वाले चला रहेंगे सो इच्छियो हैक्टे अन पेंगम बिना अत्थवित देख सा इनका एक चुरत फॉर यू। यह प्रक्रिया डिफॉल्ट गेटवे की अवधारणा को भी व्यावहारिक अर्थ देती है। छोटे और स्थिर नेटवर्कों में स्टैटिक रूट स्पष्ट नियंत्रण देते हैं, परंतु नेटवर्क बदलने पर उन्हें हाथ से संशोधित करना पड़ता है। इसके विपरीत डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल राउटरों के बीच पहुंच जानकारी बांटते हैं और परिवर्तनों पर मार्गों को समायोजित कर सकते हैं। पुस्तक में RIP, EIGRP और OSPF जैसे उस परीक्षा काल के प्रमुख प्रोटोकॉलों का अध्ययन उनके उद्देश्य और मूल विन्यास के साथ आता है। इनकी तुलना यह समझने के लिए जरूरी है कि मार्ग चयन में हॉप संख्या, लागत, बैंडविड्थ, अभिसरण और प्रशासनिक प्राथमिकता जैसे तत्व क्यों मायने रखते हैं। केवल कमांड दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गलत नेटवर्क स्टेटमेंट, निष्क्रिय इंटरफेस या गलत नेक्स्ट हॉप से रूटिंग टेबल अपेक्षित मार्ग नहीं सीखेगी। इस विषय का व्यावहारिक मूल्य सत्यापन कमांडों और क्रमबद्ध जांच में है। पाठक सीखता है कि पैकेट हानि को भौतिक लिंक, एड्रेसिंग या रूटिंग टेबल किस स्तर पर जांचना चाहिए। अंत में वैन, ACL, नेट और संरचित ट्रबलशूटिंग का समन्वय। पुस्तक नेटवर्क को केवल आंतरिक लैन तक सीमित नहीं रखती, वाइड एरिया नेटवर्क की चर्चा, दूरस्थ साइटों को जोड़ने वाले लिंक, एनकैप्सुलेशन और सेवा प्रदाता आधारित कनेक्टिविटी के संदर्भ में होती है। वैन विषय यह स्पष्ट करता है कि एक संगठन की शाखाओं के बीच संचार में इंटरफेस, घड़ी संकेत, लिंक स्थिति और रूटिंग सभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुरक्षा और IP सेवाओं में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जैसी क्षमताएं शामिल हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ट्रैफिक को स्रोत, गंतव्य या प्रोटोकॉल के आधार पर अनुमति या अस्वीकृति देने का नियम आधारित तरीका है। नियमों का क्रम निर्णायक होता है, इसलिए सही तर्क के बावजूद गलत क्रम अनपेक्षित ट्रैफिक रोक सकता है। नेट निजी IPv4 पतों वाले आंतरिक नेटवर्क को सार्वजनिक पते के माध्यम से बाहरी नेटवर्क तक पहुंच देता है और इस प्रकार सीमित सार्वजनिक एड्रेस स्थान के उपयोग में सहायक होता है। इन विषयों को ट्रबल शूटिंग से जोड़ना पुस्तक की व्यावहारिक दिशा है। समस्या निवारण में पहले लक्षण को परिभाषित करना, फिर भौतिक स्थिति, इंटरफेस, एड्रेसिंग, VLAN, रूट और नीति को क्रम से जांचना अधिक विश्वसनीय है। यह अनुशासन अनुमान आधारित बदलावों से बचाता है और वास्तविक नेटवर्क संचालन में भी उपयोगी रहता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो उस समय के सिस्को CCNA रूटिंग एंड स्विचिंग मार्ग विशेषकर तैयारी कर रहे हो या पुराने सिस्को नेटवर्किंग ढांचे को समझना चाहते हो, नए पाठक को इससे नेटवर्किंग शब्दावली, IP एड्रेसिंग, स्विचिंग और रूटिंग का व्यवस्थित आधार मिल सकता है। जिनके पास पहले से कुछ अनुभव है, उनके लिए लिखित, लैब, कॉन्फ़िगरेशन केंद्रित, सोच और सत्यापन की आदत अधिक मूल्यवान हो सकती है। पुस्तक की विशेषता इसका व्यापक परीक्षा मानचित्रण और सिद्धांत को उपकरण व्यवहार से जोड़ने का तरीका है। कई संक्षिप्त गाइड केवल तथ्यों या कमांडों की सूची देती हैं, जबकि यह सामग्री को नेटवर्क के वास्तविक निर्णयों से जोड़ती है, जैसे राउटर मार्ग क्यों चुनता है, स्विच लूप क्यों रोकता है या गलत सबनेट मास्क कनेक्टिविटी को कैसे प्रभावित करता है। टॉड लैमल का प्रस्तुतीकरण परीक्षा उद्देश्यों को क्रमबद्ध अध्ययनीय इकाइयों में बदलता है और अभ्यास की आवश्यकता को केंद्रीय मानता है, फिर भी इसे खरीदने या पढ़ने से पहले परीक्षा संस्करण पर ध्यान देना आवश्यक है। पुस्तक में वर्णित परीक्षाएं अब वर्तमान सिस्को CCNA परीक्षा नहीं है, इसलिए वर्तमान प्रमाणन उम्मीदवार इसे मुख्य अद्यतन स्रोत नहीं माने, बल्कि नेटवर्क की स्थायी बुनियाद और पुराने रूटिंग एंड स्विचिंग पाठ्यक्रम के संदर्भ स्रोत के रूप में उपयोग करें। इस सीमा के भीतर इसकी विस्तृत कवरेज और व्यावहारिक उन्मुखता इसे समान श्रेणी की अनेक परीक्षा पुस्तकों से अलग बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं टॉड लैमल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।